ओम शांति। मुरली याद है परसों की? बताओ, कल सवेरे भी थी अव्यक्त शिवरात्रि पे ही और परसों भी थी। बताओ किसको याद है? बताओ किसको याद है? पॉइंट तो थोड़ी थी, बाकी तो बधाइयां दी बाबा ने, महिमा की। और बोलो, व्यर्थ कौन से फूल चढ़ा दो बाबा पर? व्यर्थ के अक के फूल चढ़ा दो। हैं क्या सबके पास? सच है? अच्छा, भंडारे भरपूर चढ़ाएंगे? रोज चढ़ाने हैं। एक दिन चढ़ाने से तो काम नहीं चलेगा, रोज ही चढ़ाने होंगे। और क्या था? साथ रहना है बाबा के। मेरा बाबा कहते हो तो इस बात को कम नोट करते हैं लोग। मेरा बाबा कहते हैं, देखो तीन उत्तर आ चुके हैं अब तक। पहले बाबा ने कहा था, मेरा कहते हो तो मेरे समान तो बनो। दूसरी बार कहा, मेरा बाबा कहते हो तो मेरा पन होना चाहिए। और इस बार कहा, मेरा बाबा कहते हो तो मेरा और कुछ नहीं, तब मेरा बाबा रियल में होगा। अगर बाबा भी मेरा और बहुत सारे भी मेरे, देखो बाबा का ज्ञान, उसका मार्ग कितना वंडरफुल है। रहो ग्रस्त में, लेकिन रहो उससे उपराम। सबको प्यार की नजर से देखो, लेकिन किसी से प्यार न करो, एक से ही करो। सब अपने हैं, लेकिन अपना कोई नहीं। ये नहीं अपना कोई नहीं, इतना ही, सब अपने हैं। कितना गहरा बैलेंस बाबा सिखाते हैं। समझो ये संसार हमारा परिवार है, बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन हमारा कोई नहीं। सूखापन नहीं है इसमें, इसमें है बहुत बड़ा रस। क्योंकि मनुष्य की बुद्धि अगर चारों ओर बिखर जाती है तो वो एकाग्र नहीं हो सकती। तो आज हम चेक करेंगे, हमें ये व्यर्थ के अक के फूल चढ़ाने ही हैं। क्योंकि व्यर्थ से अगर हम मुक्त हो जाते हैं, मुक्त तो बहुत बड़ी साधना है होना, लेकिन हमारा व्यर्थ बहुत सारा नष्ट हो जाए, तो संगम युग का सच्चा सुख मिलेगा। योग भी बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो योग लगता है? योग नहीं लगता। व्यर्थ संकल्प चलते हैं और मुरली में आ बैठे तो मुरली के लिए बुद्धि में जगह ही नहीं है, बाहर चली जाती रहेगी। तो बहुत बड़ी चीज है। दो बातें बाबा की मुरलियों से हम नोट कर सकते हैं। जब तुम व्यर्थ से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, यही तुम्हारी संपूर्ण स्थिति है। और व्यर्थ से मुक्त होना ही संपूर्ण पवित्र स्थिति है। तो जो हमारी टॉप की स्थितियां हैं, उन सब में व्यर्थ का कोई स्थान नहीं है। व्यर्थ होने से आत्मा की डिग्री कम होगी या नहीं बोलूंगा, आत्मा की डिग्री कम होगी, तेजी से कम हो जाएगी। अगर व्यर्थ बहुत चलता है तो आत्मा की डिग्री, उसकी कला, उसकी परसेंटेज बहुत डाउन होती जाएगी। इस महत्व को जानते हुए दो चीजों पर ही बाबा ने ध्यान दिलाया, समय और संकल्प तुम्हारा अनमोल खजाना है, दोनों ही महान हैं। कल के सब परसों के सब थे, दोनों ही महान हैं। वैसे तो हर मनुष्य के लिए रोज का समय भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, और ये जो ज्योतिष विद्या है इसमें तो समय का बड़ा भारी महत्व है। इस टाइम ये काम न करना, इस टाइम करना, वहां तो रोज की चर्चा है। कोई लोग मानते हैं, कोई लोग नहीं मानते, वो अलग चीज हुई। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है मनुष्य के लिए, और संगम युग का समय सोच लो, हीरे तुल्य, बाबा ने भी कहा हीरे तुल्य, जिसमें हम मन चाहे खजाने प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे, मन चाह भाग्य बना सकते हैं हम। सोच लो हमारा ये सुंदर समय कैसे बीत रहा है। सभी चिंतन करेंगे मधुबन में रहते हुए, मेरा ये सुंदर समय, सुंदर भी छोटा शब्द है, कोई शब्द ही नहीं है, भगवान सामने है, तिलक और ताज लेकर आ गया है सामने, लो तख्त पर बैठाने के लिए तैयार है। जितना चाहे जन्म जन्म का भाग्य बना लो। देखो प्रभु मिलन रोज और जब चाहे, जिस मिलन के लिए युगों से हमें भी इंतजार थी, बड़े बड़े सन्यासी तपस्वी जिस मिलन के लिए तरस रहे हैं, वो मिलन हमें रोज हो रहा है। हो रहा है? संसार में कोई सभा होगी जिसमें कहे कि रोज भगवान से मिलते हैं? कल्पना भी नहीं है किसी को। भगवान से मिलन की तो आजकल धर्मों में, भक्ति में बात ही खत्म हो गई है। इच्छाएं लेकर भक्ति करते हैं, बस वो पूरी हो गई, वाह वाह। कोई साक्षात्कार हो गया तो और बड़ी चीज, कोई सिद्धि मिल गई तो और बड़ी चीज, यहीं तक लोग सीमित हैं। प्रभु मिलन का सुख, तो ऐसा सुंदर मेरा समय कैसे बीत रहा है, चेक करेंगे, करेंगे भाई लोग। बहुत सुंदर जगह पर सभी आए हैं, है या नहीं सुंदर जगह? विश्व का सबसे महान तीर्थ, मुझे तो वो चित्र सामने है, जब यहाँ भीड़ लगेगी बहुत ज्यादा, निकल भी नहीं पाएंगे आप लोग, जैसे नीचे होता है। अभी भी बड़ी संख्या थी तो गाड़ी ले जाना भी मुश्किल होता था, एक नंबर गियर पे ही चलानी पड़ती थी, कौन सी माता कब आगे आ जाए। माताएं देखती उधर हैं, चलती उधर हैं। बहुत डर लगता है भाई, किसी को जरा भी लग गया उनको तकलीफ हो ना हो, हमें तो बहुत होगी, किसी को लग गया बेचारे को। तो एक वंडरफुल समय आ गया है, उसमें भी बहुत सुंदर समय और आ रहा है। जिसने संगम युग के सुंदर समय को ईश्वरीय प्राप्त तियों में बिताया है, प्रभु मिलन के सुखों में, अतिंद्रिय सुखों में बिताया है, अच्छी साधनाएं करते हुए बिताया है, पवित्रता का आनंद लेते हुए बिताया है, उनके लिए आने वाला समय, उसके लिए भी कोई शब्द नहीं, चमत्कारिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्य वाला होगा। बाबा ये भी कहते हैं ना, तुम्हारे चेहरे से क्या दिखाई दे, तुम्हारा भाग्य। लोग कहें ये कितने भाग्यवान लगते हैं, ये बहुत भाग्यवान है लगता है, लोग कहेंगे इन्हें कुछ विशेष चीज मिली है जीवन में। आजकल जो धनवान होते हैं उनके चेहरों पे भी धन की खुशी तो होती है, लेकिन कई टेंशन की रेखाएं भी होती हैं सबकी। धनवानों को हम तो बहुत देखते हैं, कई तो बेचारे अति दुखी, आपसी झगड़ों से दुखी, प्यार में दुखी, खराब प्यार की बात मैं नहीं कर रहा हूं। एक भाई कल आया, भाई लोग सुन ले ध्यान से, कहा भाई हम दो भाई, दोनों में बहुत प्यार, बाप भी है, मैं जो भी पैसा होता था प्रॉपर्टी खरीदता था छोटे भाई के नाम, अब वो बड़ा हो गया है, उसकी भी शादी हो गई, अब कहता है ये सब मेरा है। मैंने कहा भारत में एक कहावत है, न कोई किसी का बाप न भैया। बोलो आगे, बाप तो एक्सपर्ट हैं, सबसे बड़ा रुपया। मैं कहने लगा भाई तुम जो मिलता है ले लो, नहीं तो ये भी जाएगा। इसने उसे कहा मुझे कुछ तो दे दो, ये खुशामद कर रहा उसकी, बड़ा भाई हाथ जोड़ता है भाई इतना तो दे दो, कहता इतना तो नहीं दूंगा, अब वो मालिक है इतना नहीं दूंगा। तो देखो कैसा खेल चल रहा है, पुण्य की पूंजी खत्म होती जा रही है, धन ही सब कुछ हो गया, भाई जाए जहन्नुम में, धन मिले हमें, ऐसा धन सुख देगा, बहुत कष्ट पहुंचाएगा, बहुत कष्ट पहुंचाएगा। तो हमें देखना है, फिर रिपीट कर रहा हूं, मेरा संगम युग कैसे बीत रहा है, अपनी पीछे की यात्रा भी देख लेना आज, कोई 20 साल से ज्ञान में होंगे, कोई 10 साल से, हमारी ये संगम युग की यात्रा कैसी बीती। बाबा ने एक बार कहा कि अपने सुंदर अनुभवों को याद करना भी मन मनाभव होना है, क्योंकि प्रभु प्रेम में हम मगन हो जाएंगे ना उन्हें याद करते, हमारे अनुभव तो बाबा के ही साथ के है ना, और तो कुछ नहीं। तो कैसे बिता रहे हैं और आगे का समय मुझे कैसे बिताना है, प्लान बना ले सुंदर, ऐसा ना हो ये अनमोल समय उलझनों में बीत रहा हो, मोह ममता में ये सुंदर समय जा रहा हो, लोभ के पीछे सांसारिक इच्छाओं के पीछे मन भटक रहा हो। आज भी ऐसा ही कुछ महाभक्त, तुम्हारे लिए ये जैसे कि दुनिया है ही नहीं। तो चेक कर ले कहीं आपसी टकराव में तो समय नहीं बीत रहा, परिवारों में भी टकराव की कोई कमी नहीं आजकल, क्योंकि हिसाब किताब समाप्ति की ओर है। कैसे बिता रहे हैं अनमोल समय, प्राप्तियों के साथ बिताना है, पसंद है ना, मैं रुक रहा हूं इस बात पे, क्योंकि ये सबसे सुंदर बात है, हमारा समय ऐसे बीते कि हम भी वाह वाह करें, बाबा भी वाह वाह करे, और कौन तीसरा, संसार भी वाह वाह करे, कि भाग्य तो इनका देखो। ये न कहे ओम शांति में चले तो गए पर रह तो वैसे ही गए, ये कोई न कहे, तो हमें व्यर्थ के अक्के फूल चढ़ाने हैं शिव पर रोज। संकल्प कर लो, अब मुख्य बात ये होती है, ये कहना कि व्यर्थ छोड़ना है, इसमें तो कुछ खर्च होता नहीं, लेकिन छोड़ने की साधना करना, मैं इसको साधना नाम दे रहा हूं, बाबा के शब्दों में तुम्हारी बहुत सुंदर साधना है बुद्धि को स्थिर करने की। मन भटकाता है ना बुद्धि को, संकल्प भटकाते हैं, बुद्धि को स्थिर करने की साधना। तो थोड़ी थोड़ी ये साधना करेंगे, मैं पहले समाधान दे रहा हूं, कारण पे बाद में आते हैं। आत्मा के स्वरूप को देखने की प्रैक्टिस करें, विजुअलाइजेशन, बिल्कुल मैं चमकती ज्योति बहुत तेजस्वी आत्मा, 10 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड तक देखते ही रहें, कर लो अभी प्रैक्टिस मेरे बोलते बोलते, खुद को देखो, चमकती आत्मा, तेजस्वी आत्मा, किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं। 10 सेकंड से शुरू करके 1 मिनट तक ले जाना, फिर बाबा के स्वरूप को देखना, महाज्योति। बाबा का स्वरूप केवल बिंदु नहीं कि ये बिंदु लग गया, ऐसा है बाबा। बाबा की गुई ये बात सुना देता हूं आपको। कभी बाबा ने कहा था, मैं अगर अपने वास्तविक स्वरूप में तुम्हारे सामने आ जाऊं तो तुम एक भी यहां ठहर न सको। जो गीता में लिख दिया ना, अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, आपका रूप तो हजारों सूर्यों से भी अधिक तेजो में है। वो तो एक तुलना की गई है, 1000 सूर्य। सूरज का तेज अलग, ये अलौकिक तेज होता है। दोनों में अंतर हो गया बहुत ज्यादा। अलौकिक तेज, सूक्ष्म तेज, वो इतना ज्यादा है कि अगर वो उस स्वरूप में प्रकट हो जाए हमारे सामने तो हम ठहर न सकेंगे, देख ही नहीं सकेंगे उसे। इसलिए बाबा अपनी शक्तियों को समेट कर आते हैं। ये बाबा के शब्द हैं। मैं अपनी शक्तियों को समेट कर तुम्हारे पास आता हूं। अब सोच ले, आगे सोचे कुछ। बाबा सदा संपूर्ण है ना, उसमें परम तेज है। हम जब संपूर्ण बनेंगे तो हम में भी वैसा ही तेज आ जाएगा, अति अति तेजस्वी हो जाएंगे हम भी। सभी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, विजुअलाइजेशन कहते हैं अंग्रेजी में, देखना। फिर देखेंगे अपना देव स्वरूप, फिर देखेंगे अपना पूज्य स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप। 5 ऐसे कर लें। ब्राह्मण स्वरूप तो मैं ही, मैंने ब्राह्मण की जगह बाबा का कर दिया। इन 5 स्वरूपों को देखने से व्यर्थ बहुत समाप्त हो जाएगा। सभी ध्यान दें इस पर, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। मोटा सा उदाहरण ले लें, कोई प्रोग्राम चल रहा है और हम उसे देखने लगे, कोई एक्टर है सामने, हम उसे देखने लगे। देखो हमारी कर्मेंद्री एक ही काम करती है, अगर हम उसे देख रहे हैं ध्यान से तो कान कुछ भी सुनेंगे नहीं, क्या बोला जा रहा हो मिस हो जाएगा। एक ही काम करेगी कर्मेंद्री एक समय में। ऐसे ही बुद्धि से अगर देखा जाएगा तो मन पूरी तरह शांत हो जाएगा। ये मन बुद्धि की बात है ना, सूक्ष्म, ये वो कर्मेंद्रियां अलग, ये सूक्ष्म। सूक्ष्म जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, जो चेतन शक्तियां हैं, बुद्धि से देखेंगे। आप अपने देव स्वरूप को देखा करो, देखते देखते यहाँ का ये संसार आप ही भूलता जाएगा, इसके आकर्षण समाप्त होते जाएंगे। ये एक विधि अपनाएंगे। दूसरी विधि है, देखो इसमें टाइम तो देना पड़ेगा या बिना टाइम दिए हो जाएगा, मैं कम से कम बात कह रहा हूं, एक बार सवेरे एक बार शाम को। सवेरे जब हम कहते हैं 6 बजे तक, अब यहां माताओं को सेवा होगी, किचन में सेवा रहती है, लेकिन 5 बजे तक, तब तक तो लगभग खाली रहेंगे ना, कोई 4:30 तक खाली होगा। 3:30 उठ के खाली होंगे तो ये अभ्यास कर लो, एक एक बार 5 बार कर लो। माताओं की एक बात देखकर मुझे बहुत आनंद होता है। यमसर रोड में माताओं से मिले हम 6 दिन पहले। मैंने सबसे पूछा, कितने बजे उठती हैं माताएं, मुझे पता तो है। 2:30 बजे, 3 बजे, एक कन्या बैठी थी छोटी, आगे छोटी माना होगी 16-17 साल की। मैंने कहा तुम कितने बजे उठती हो रोज? 2 बजे। मैं सोच रहा था इनका योग लगे या न लगे, भगवान तो इन पे राजी रहता है। मेरे लिए उठ के यहां तो आ गए, प्यार तो करते हैं मुझे ये बहुत। योग लगना अलग विषय है। अब बचना है व्यर्थ से, तो एक प्रैक्टिस, दूसरी प्रैक्टिस स्वमान की। और स्वमान की प्रैक्टिस से क्या होगा, बहुत अच्छी तरह सभी जान लें, समझ लें, हमारे मन को चाहिए सुंदर विचार, तो ये व्यर्थ के विचार खुद ही लोप हो जाएंगे। और सबसे सुंदर विचार हमारे पास दो ही होते हैं, मुरलियों से और स्वमान के। तो स्वमान की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो व्यर्थ का प्रकोप नष्ट होता जाएगा। अब जिसको बहुत व्यर्थ चलता हो, आपको तो यहां नहीं चलता होगा, लेकिन कोई आपके पास आ जाए कि व्यर्थ बहुत ही चल रहा है, क्या करूं, तो हम उसको एक प्रैक्टिस कराते, आप भी करा देना। जो अपने ही संकल्पों से बहुत दुखी हों, जो ओवर थिंकिंग में आ गए हों, आजकल बीमारियां मानसिक बहुत हो गई हैं, किसी का नाम ओसीडी है, किसी का नाम सिजोफीनिया है, किसी को डिप्रेशन कहते हैं, कई नाम हो गए इनके, किसी को नींद नहीं आ रही है, तो हम उनसे प्रैक्टिस कराते हैं। आपको कह रहा हूं, आपको भी करानी, आपके घर में कोई हो उन्हें बता दो ये मंत्र है, जो ज्ञान में नहीं है ना, उन्हें बता दो ये मंत्र है, इसका जाप जैसा कर लो, तो कोई भी एक स्वमान लेकर सारा दिन बहुत बार याद कर, जय मंत्र की तरह। स्वमान बहुत सारे, 5 चुन लें, 8 चुन लें, मान लो आपने स्वमान चुन लिया, मैं विजयी रतन हूं, बहुत याद कर लें, तो बाकी व्यर्थ संकल्प शांत हो जाएंगे। आपने स्वमान चुन लिया, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, स्वरूप को देखने भी लगो, अपना अभ्यास करने लगो, अनेक व्यर्थ खत्म हो जाएंगे। जिनको बहुत व्यर्थ चलता है, कभी कभी उनसे ही अभ्यास भी होते नहीं है, तब कोई उन्हें याद दिलाने वाला चाहिए, रिमाइंडर। अगर वो आपके घर में है, आजकल तो फोन का जमाना है, फोन करके याद दिला दो, कर रहे हैं भाई, फिर करेगा मनुष्य। बच्चे हैं आपके, बच्चों को बहुत ओवर थिंकिंग है, ज्यादा सोचना मोबाइल के कारण। एक बच्ची का इंटरव्यू ले रहे थे कोई, मैं देख रहा था अभी, वो ज्ञान में है, 7 साल की, बड़ा अच्छा बोल रही थी, मुझे बाबा साक्षात्कार कराते हैं, मुझे बाबा ने ये कहा। उसे पूछा गया, तुम फोन पर ये वो नहीं देखती, कार्टून नहीं देखती? कहा मैं नहीं देखती। क्यों नहीं देखती? जो कार्टून देखते हैं वो कार्टून जैसे ही बन जाते हैं। अगर छोटे बच्चे कैसा सुंदर उत्तर दे रहे हैं, ये तो हमसे भी नहीं दिया जाएगा। तो इस मोबाइल के कारण बहुतों के मन की स्पीड फास्ट हो गई है, इसको धीमा करना है। देखो, आपकी जानकारी के लिए, मन में 1 मिनट में 25 संकल्प उठते हैं। आजकल तनाव के कारण, चिंताओं के कारण, परेशानियों के कारण ये स्पीड बढ़ जाती है, 40 तक पहुंच जाती है, तो मन की शक्तियां तेजी से नष्ट होने लगती हैं, मनुष्य थक जाएगा बहुत जल्दी। इसको हमें धीमा करना है, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। अगर कोई योगी 10 करते तो उसको परम सुख का अनुभव होने लगेगा, उससे कम भी किया जाएगा, लेकिन 10 तक ले आए तो अतीन्द्रिय सुख में पूरा दिन बीतने लगेगा। स्वमान के अभ्यास से मन की ये स्पीड धीमी हो जाएगी। पसंद है? कुछ भी समझ में ना आए, एक स्वमान ले लो, सारा दिन मंत्र की तरह 1000 बार उसे याद कर जाओ, चाहे भोजन बना रहे हैं, घरों में खिला रहे हैं, खा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, सब में उसका अच्छा अभ्यास कर दिया, 2-4 घंटे करने से ही आदत पड़ जाएगी, भूलेंगे, फिर याद करेंगे, भूलेंगे फिर याद करेंगे। दो चार घंटे ऐसी मेहनत कर ली तो शाम तक बहुत अच्छा अभ्यास हो जाएगा। अब सोचना है, ये तो हुए समाधान दो तीन, अब सोचना है मुझे व्यर्थ क्यों चलता है। हर एक अपने पे काम करेगा, इसको होमवर्क कहेंगे। मेरे व्यर्थ का बीज कहाँ है? चिंताएं करने की आदत है, बीज हो गया ना चिंता। ज्यादा सोचने की आदत है, अवगुण देखने की आदत है, जल्दी परेशान हो जाने की आदत है, और भी बहुत सारी बातें इसमें। पांचों विकारों में किस विकार के कारण मन भाग रहा है? इच्छाएं बहुत हैं दुनिया की, ब्राह्मणों को तो काफी कम हो जाती हैं, पर कभी कभी क्या हो रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है कईयों की दबी हुई इच्छाएं भी जागृत हो रही हैं। तो जिनको कोई इच्छा नहीं होती थी उनको अब इच्छाएं होने लगी। अरे घूम फिर के आए कहीं, कोई जाने नहीं देता, हमारा जीवन ऐसे ही बीत जाएगा क्या? उन्हें पता नहीं तीनों लोकों में घूमने का प्रोग्राम बन गया है। बन गया नहीं, उससे सुंदर कुछ नहीं, चौथा लोक भी स्वर्ग लोक, वहां घूमो ना, आनंद आएगा। स्वर्ग से अच्छे सीन कलयुग में कहीं होंगे? मोह तो हमारे व्यर्थ का बीज नहीं है, कोई बीमारी तो हमारे व्यर्थ का बीज नहीं है। इसी ग्रुप में नीचे कई लोग आए होंगे, छोटे भी आए, छोटी कन्याएं, मैं बहुत बीमार रहती हूँ, आज भी आई दो, मुझे सदा ही बीमारी रहती है, मैं क्या करूं? छोटे छोटे मुश्किल से 20 साल से भी कम कम के। कहीं बीमारियां तो हमारे व्यर्थ का कारण नहीं है? और सोचो कहीं हम कंपेरिजन तो नहीं करते? कंपेरिजन माताएं समझ ले, तुलना। इसकी साड़ी बहुत अच्छी, मेरी तो ढीली डाली है, माताओं की प्रॉब्लम, ठीक है ना। शादियों में जाएंगी तो ये देखती रहेंगी हाथ में क्या क्या पहना, और साड़ी कैसी है, कपड़े कैसे हैं। कंपेरिजन, अपना अच्छा होगा तो भी दूसरे का देख के अपना बेकार लगने लगेगा, अरे तुम्हारे तो कपड़े ऐसे ही हैं। वो आजकल बनावटी इमिटेशन ज्वेलरी आती है ना, चमकते हैं खूब, उसे देख के लगेगा इनके कितने अच्छे, शायद साहूकार ज्यादा हैं। कंपेरिजन मनुष्य को बहुत कष्ट देता है, खुशी भी छीन लेता है। कहीं व्यर्थ का कंपटीशन, ईर्ष्या द्वेष, तेरा मेरा, हमारे संकल्पों का बीज तो नहीं है? मोह तो बड़ी चीज है, उसको तो धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। मोह को समाप्त करने की विधि क्या है? छोटी सी, बहुत सुंदर है, बोल रहे, ठीक बोल रहे, बोलो। आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, आपे ढीला पड़ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा मोह कहाँ चला गया। हमने ऐसी माताएं देखी हैं जिनका मोह लगभग समाप्त हुआ। जैसे बच्चे चार, अब वो बड़े हो गए, अब उनके बच्चे भी हो गए, अब जो दादी है ना, अब देख लो दादियां बहुत बैठी हैं यहाँ। कोई कोई तो मोह में बिल्कुल फंसी रहती हैं, पहले 2 से मोह था, फिर 8 से हुआ, अभी 15 से है, और कोई कोई सोचते हैं बस कर्तव्य पूरा हुआ, अब इनका अपना जीवन है, करने दो, हम तो बाबा की तरफ चलेंगे, बाबा से सब कुछ प्राप्त करेंगे, इनको हमने कर दिया जो करना था, अब इन्हें जीने दो अपने ढंग से। और कोई कोई क्या करते हैं, मेरी आज्ञा के बिना घर का पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, है या नहीं? भगवान भी नहीं सोचता कि मेरी श्रीमत के अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना चाहिए, श्रीमत दे देता है, चलो इस पे, फिर साक्षी होके देखता है कौन कितना चल रहे हैं। कई सोचते हैं मेरी आज्ञा के बिना घर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये परेशान कर देता है। कहीं क्रोध तो हमारे व्यर्थ का कारण नहीं है। व्यर्थ की कामनाएं, इच्छाएं अलग होती हैं। कामनाएं इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से कुछ बहुत चाहना, दूसरों से कामनाएं रखना, कहीं वो तो हमारे व्यर्थ का कारण नहीं है। चेक करेंगे और एक एक को ज्ञान के द्वारा हटाएंगे। अब इसमें काम करेगा योग के साथ ज्ञान, ज्ञान का बल, और उसमें सबसे सुंदर ज्ञान कौन सा है? ड्रामा का। सुंदर तो सारे ही हैं, पर व्यर्थ को खत्म करने में ड्रामा का ज्ञान, जो बाबा ने कहा तीन बिंदी लगाओ, दो की बात हम कर आए, आत्मा और बाबा, उसके स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करना है। ये नहीं बिंदी लगा दी हमने तो तीन, इससे नहीं काम चलेगा। बिंदु स्वरूप पर, आत्मा का बिंदु स्वरूप, परमात्मा का ज्योति स्वरूप बिंदु स्वरूप, उस पर मन को एकाग्र करना है, बुद्धि को स्थिर करना है। अब तीसरा बिंदु है ड्रामा। ड्रामा के द्वारा, ड्रामा के ज्ञान के द्वारा हम बहुत सारे व्यर्थ को मिटाएंगे, जिसको जैसे भी होता है। किसी को पास्ट की बातों के कारण व्यर्थ चलता है, बहुतों को चलता है। कई लोग पास्ट में, पास्ट समझ गए ना, बीता हुआ समय, जो बीत गया जीवन, किसी ने सताया है आपको, किसी ने बहुत कष्ट दिया है, किसी ने बहुत धोखा दिया है, पास्ट आपका कठिनाइयों में बीता है, पास्ट आपका अपमान सहते हुए बीता है, अपनों से आपको परेशानी हुई है बहुत, बच्चों ने दुर्व्यवहार किया है, कईयों के दिमाग पर वो छाया रहता है। हटा दो उसको, कुछ भी हो गया, अब कहां पहुंच गए? सहज बात, चुप हो गए सब, कहां पहुंच गए? ड्रामा में नहीं, भगवान के पास पहुंच गए। लोग तो मर के पहुंचते हैं, यहां सब जिंदे ही पहुंच गए। पहुंच गए ना उसके पास, उसके कार्यों में लग गए। आप सब उसके कार्य संपन्न करने ही तो यहां आए हैं, उसके कार्यों में लग गए हैं। तो जो भी बीता, एक संकल्प कर दो आज, अगर वो न होता तो ये भी न होता। ये तो समझ गए ना, प्रभु मिलन, परम सुख, भगवान का ज्ञान, उसका साथ, अगर वो न होता तो ये भी न होता। मैं कई परिवारों की बातें ऐसी आती हैं जो कष्टों में आ गए, सब कुछ चला गया, फिर बाबा के ज्ञान में आ गए। तो जब ये बात आती है ना मुरली में, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, तो वो बहुत दुखी होते हैं। क्या फिर से वो दुख के दिन आएंगे? फिर से नहीं आने चाहिए, मेरे पास भी आते हैं, ऐसे योग की विधि बताओ दोबारा वो दुख के दिन ना आए। अब परेशान होते हैं तो मैं तो कुछ बता ही देता हूँ, पर पता तो है ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। मैं उनसे ही पूछा करता हूँ, ज्ञान नहीं है क्या? है तो सही, फिर भी चाहते हैं ड्रामा को बदल दें। तो मैं उनसे पूछता हूँ, ज्ञान में क्यों आए? का दुख ले आया, तो दुख अच्छा हुआ ना। किसी कवि ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, बलिहारी या दुख की प्रभु को दियो मिलाए, कुछ ऐसे शब्द हैं बहुत अच्छे हैं। गोविंद दियो मिलाए, वही प्रभु मिला दिया। तो कुछ भी हो गया हो, दिमाग पर उसकी छाया अब मिटा दो, बहुतों के ऊपर रहती है वो, दुख याद आता रहता है। कईयों के जीवन में ऐसा हुआ, माताएं आती हैं, बुजुर्ग भाई जी, तीन जवान बच्चे मर गए मेरे। मैंने कहा कितने बचे? चार और हैं। अब वो जो तीन मर गए ना, उसका दुख इसको सुख से नहीं जीने दिया है। जो चार बच्चे और हैं, उनका सुख भी लोप हो गया इसके लिए। मैं बहुत समझाया, प्रैक्टिकल बातें। अरे भाई तुमको चार तो है ना, और तीन का हिसाब किताब पूरा हो गया था, सात होते तो तुम दुखी कितनी रहती, कर्ज में आ जाती, सातों की शादियां करानी पड़ती। उनका इतना ही पार्ट था, ज्ञान होते भी वो दुख जाता नहीं दिमाग से, और वो दिमाग को पकड़े रहता है। हटा दो, मैं रुक रहा हूं इस बात पे, हटाएंगी माताएं, माताओं को ज्यादा रहता है। बोलो कौन कौन हटाएंगी बीते हुए काल के कष्टों का प्रभाव, धीरे धीरे उठा रहे, उठा दो कोई बात, मिटाना तो है ही ना, उसमें सुख थोड़ा ही है, नीचे आंख करके उठा दो, कोई नहीं देखेगा आपको। भविष्य की चिंताएं, पास्ट बुरा व्यर्थ चलाता है, कुछ ऐसा है व्यर्थ चलता नहीं है, लेकिन वो दुख ब्रेन को पकड़े हुए है, वो और खराब होता है। भविष्य की चिंताएं, चिंताओं के लिए बाबा क्या कहते हैं, चिंता किसके समान है, चिता के समान, जिंदा जलाती है। भविष्य की चिंता होती है मां को ज्यादा होती है, बच्चे अभी योग्य नहीं हैं, बच्चा शराब पीने लगा है, माताएं आई इसी ग्रुप में, बच्चा शेयर मार्केट में सब कुछ नष्ट कर गया है और फिर भी कर रहा है, पत्नी भी दुखी, दो बच्चे वो भी दुखी, 50,000 सैलरी मिलती है, सब सत्ते में लगा के नष्ट कर देता है। मैंने कहा उसको समझाओ 20,000 तो दे दे पत्नी को घर खर्च के लिए, नहीं तो चिंता तो होगी ना, क्या होगा। एक बड़े से लड़के को माता लेके आज फिर आई, कल भी आई थी, भाई जी इसको देखो, मैंने कहा देख तो लिया, नहीं देखो अच्छी तरह, क्या है उसको, मानसिक रोगी। अब माँ को चिंता है मैं कल चली जाऊंगी इसका क्या होगा, तो चिंताएं तो प्रैक्टिकल रहती हैं, लेकिन कैसे खत्म करेंगे, बोलो, हम नहीं होंगे तो कोई और होगा। बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी भारत में, बच्चे बचे थे, बड़े बहुत मर गए थे, एक एक बच्चे को एक एक साहूकार ने गोद ले लिया था, याद हो आपको, कुछ साल पहले की बात है, कहाँ हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, अभी भारत में हुआ था। तो हम नहीं तो कोई और, दूसरा हरेक का श्रेष्ठ भाग्य उनके साथ है, हरेक का भाग्य उन्हें ले जाएगा वहीं जहां उनको जाना है। और तीसरी बात, बाबा के हवाले कर दो उन्हें, ये सबसे सुंदर बात है, पर ये होता नहीं, करो हवाले और रोज संकल्प करो इन सभी बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर होगा। इस बात को बहुत लोग नहीं समझ पा रहे हैं, हमारे संकल्पों में निर्माण शक्ति है, कौन सी शक्ति, बोलो पीछे वाले कौन सी शक्ति, जो संकल्प सच्चे दिल से बार बार करेंगे उसका निर्माण हो जाएगा। समा दो इस बात को, अब तो व्यर्थ से मुक्त होना है, कैसे कैसे व्यर्थ चलता है उसको ज्ञान के द्वारा हटाना है, चाहे वो काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ मोह, जो हमने बातें गिनाई वो सब। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक एक के लिए बहुत कुछ कहा जा सकता है। अब मैं वो बात सुनाऊं जिसका प्रैक्टिकल में प्रयोग करना और आप उसे लगभग भूल गए। परसों बाबा ने कहा दिल से कहो, आगे नहीं मीठा बाबा, ये तो रटा हुआ आपको, कुछ और बोलो भाई लोग बोले, हे दयालु कृपालु बाबा मेरी ये बात ले जाओ, प्रयोग करें सभी, इसको एक्सपेरिमेंट बना लें अपने जीवन का, एक अध्याय शुरू करें जीवन में, जब हम इस तरह बाबा को कह के, ये पुकार नहीं है, ये अधिकार है, मेरे मीठे बाबा, दयालु कृपालु बाबा, मेरी ये चिंता ले जाओ, ये बच्चों का भविष्य तुम्हारे हाथों में, ले लो इनको अपने हाथों में। बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप यहाँ आ गई, घर से कोई मैसेज आ गया, मैसेज भारी है, आपको कष्ट होने लगा, करो बाबा को यूज, संभालो इसे, और देखना कैसा संभालता है, संभालेगा या नहीं, हमसे अच्छा संभालेगा, बहुत अच्छा संभालेगा। ऐसे प्रयोग सभी को करने हैं। मैं सोच रहा था कल बाबा ऐसे बता रहे जैसे भक्तों को सिखाया जाता है ना, हमें बाबा ने पिछली बार कहा था, हे दयालु कृपालु रहम दिल बच्चो, अपने भक्तों पे रहम तो करो। हमें भी कहता है जो क्वालिटी उसकी है वही उसके बच्चों को उसने दे दी है, तो हम अपने स्वमान को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत ऊंचा उठाएंगे, और लक्ष्य बना लो। एक लक्ष्य की जरूरत होती है कि मुझे व्यर्थ को छोड़ना है, न व्यर्थ सुनना है, न व्यर्थ की बातें करनी है। जो बातें बहुत करेंगे व्यर्थ की, उनका मन व्यर्थ में रहेगा, समर्थ में माताएं खाली हो गई, चार पांच मिलके बैठ गई, अपने अपने घरों की सारी खोल दी पोल, मेरी बहू ऐसी है, इसकी ऐसी है, उसकी ऐसी, एक घंटा वार्तालाप करके चुप हो, हल्के हो के चले, हल्के होंगे भारी व्यर्थ बढ़ जाएगा। चलो अब संकल्प करें सभी, कोई व्यर्थ की बातें नहीं करेंगे, न मोबाइल में देखेंगे, न कानों से सुनेंगे।
प्रभु का ध्यान।